सूरज उगने से बदलते हैं ये धरा आसमान, चलते रहने से हो जाती है हर मुश्किल आसान। चिंता को छोड़ कर आओ कर ले मन में शुभ चिंतन, हर पल को कर ले सफल सफल कह रही है ये पवन। संवार ले सुधार ले कर समस्या का समाधान, संवार ले सुधार ले कर समस्या का समाधान, 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 कर समस्या का समाधान।
नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का समाधान कार्यक्रम में। एक बार एक पिता और पुत्र मेले से कुछ सामान लेकर के आ रहे थे अपने घर की ओर। उनके साथ उनका घोड़ा था, दोनों पैदल ही चले आ रहे थे। रास्ते में कुछ लोगों ने देखा और कहा कि कैसे मूर्ख लोग हैं, घोड़ा साथ है फिर भी इस पे सवारी नहीं कर रहे हैं। अब पिताजी उस पे बैठ गए, बेटा चलने लगा। कुछ दूर आगे गए तो लोगों ने कहा कि कैसा पिता है, बेटे को पैदल चला रहा है और खुद घोड़े पे बैठा हुआ है। पिताजी उतर गए, बेटा बैठ गया। कुछ आगे चले तो कुछ लोगों ने कहा कि कैसा बेटा है, पिता चल रहा है और बेटा घोड़े पे बैठा हुआ है। अब दोनों ही घोड़े पे बैठ गए। जब दोनों घोड़े पे बैठ गए तो कुछ आगे गए तो कुछ लोगों ने कहा कि कैसे निर्दयी लोग हैं, बेचारे घोड़े की जान ही ले लेंगे, दोनों ही इस पे सवार हो गए हैं। अब दोनों उतर गए, अब सोचे कि क्या किया जाए भाई, किसी भी स्थिति में लोग खुश नहीं हैं। उन्होंने घोड़े को ही अपने कंधे में लेके चलना शुरू कर दिया। कहने का भाव, संसार में आप कुछ भी करते हैं लोग कुछ ना कुछ तो कहते हैं, और इस बात से लोग बहुत ज्यादा परेशान होते हैं कि लोग हमारे बारे में ऐसा क्यों कहते हैं। शायद हमारी बहुत सारी मानसिक परेशानियों का कारण ये है कि लोग क्या कहते हैं इस पे हम बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं। इसीलिए किसी ने एक बहुत अच्छी पंक्ति कही है कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। इसलिए क्या कहेंगे लोग, इस बात पे ध्यान ना दिया करें, मैं किस चीज में प्रसन्न हूं, मेरे जीवन का क्या ध्येय है, मेरा परिवार किस चीज में ज्यादा खुश है, इस चीज पे आप ध्यान दें तो निश्चित रूप से आपकी खुशी दूसरों को भी खुशी प्रदान करेगी। आइए इन्हीं सुंदर बातों के साथ आज की इस चर्चा की शुरुआत करते हैं और स्वागत करते हैं आदरणीय भ्राता जी का। भ्राता जी, आपका बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है। भ्राता जी, ये जो एक बात है, लोगों की बात बहुत ज्यादा परेशान करती है, सुन सुन के हम जैसे पक जाते हैं या सुन सुन के परेशान होते रहते हैं, क्या किया जाए?
कुछ तो लोग कहेंगे ही।
लोगों का काम
है कहना, गीत है शायद ऐसा।
जी जी जी।
तो देखिए, हर व्यक्ति को सुनना ही पड़ता है। हमारे भी पूरे जीवन के अनुभव हैं
जी,
आपके भी होंगे, हर व्यक्ति के हैं कि चाहे वो कितना भी अच्छा काम कर ले तो भी लोग कुछ बोलेंगे, बुरे करने वाले को तो बोलेंगे ही, लेकिन अच्छे करने वालों को भी लोग छोड़ते नहीं
है। बिल्कुल, मीन मेख निकाल
हाँ, निकाल ही देंगे, और नहीं तो यही कह देंगे ये क्या, इससे अच्छा तो मैं कर लेता। और नहीं तो यही कह देंगे।
तारीफ करने वालों की बहुत कमी हो गई है, एप्रिसिएट नहीं करते,
क्योंकि कामनाएं लोगों को ज्यादा हो गई, खुद खाली हो गए ना, तो कामना ज्यादा रहने लगी तो एप्रिसिएट क्यों करें वो, कोई और उन्हें एप्रिसिएट करे, ये इच्छा रहने लगी। दूसरों से कामना रखना तो ऐसा है जैसे उस घड़े से पानी पीना जो खाली है, तो लोगों के तो मटके ही खाली हैं, वो आपको कहां से पानी पिलाएंगे। तो हमें एक्सपेक्टेशंस छोड़ के अप्रिशिएट तो करना ही चाहिए। लेकिन रही बात ये कि लोग तो कुछ ना कुछ बोलते ही हैं, और अनेक बार यही हो रहा है कि बोल का प्रभाव मनुष्य पर ज्यादा ही पड़ता है, या तो वो अपनी खुशी खो देता है, या जो अच्छा कार्य वो कर रहा है उसमें उमंग उत्साह खो देता है, उसके मन में निराशा आने लगती है, इससे उसकी एफिशिएंसी बहुत डाउन होती है। तो ईश्वरीय ज्ञान के आधार से हमें ये सीखना है कि लोग अगर कुछ भी बोलते हैं तो न तो हम अपनी मनोस्थिति को बिगाड़ें और न अपने उमंग उत्साह को कम करें। मान लो कोई ईश्वरीय सेवा का ही कार्य कर रहा है, किसी ने बहुत अच्छी गांव में जाकर प्रदर्शनी लगाई, अब गांव वाले कुछ बोल रहे हैं मैं नया ज्ञान लेकर आ गए हैं, पता नहीं कहाँ से आ गए हैं, पहले लोग भक्ति आदि में विश्वास नहीं रखते, इनका और सूखी बातें आ गई हैं, लोग कुछ ना कुछ कहेंगे, ऐसा सुन के कई लोग घबरा जाते हैं, भाई छोड़ो लोग तो बहुत बोलते हैं।
बिल्कुल।
लेकिन अगर ये एटीट्यूड रहता है कि अगर 500 लोग देखने आए हैं तो उनमें से 50 तो बहुत अप्रिशिएट करेंगे, मिनिमम संख्या 10% हो गई, फिर थोड़े ज्यादा भी करेंगे तो हम हर चीज के जो पॉजिटिव पहलू है उसको देखने लगे, और किसी ने क्या बोला, मान लो हमने एक बहुत अच्छा काम किया, दूसरे ने कुछ बोला, तो हम जरा सूक्ष्मता से चेक कर लें कि सचमुच ऐसी गलती है क्या। भाई एक पेंटर ने बहुत सुंदर पिक्चर बनाई
जी,
और देखा फेस में किसी ने कह दिया यही ये कमी छोड़ दी है। अभी पेंटर को आर्टिस्ट को ये देखना चाहिए कि सचमुच कमी है या लोग ईर्ष्यावश बोल रहे हैं या उनकी बोलने की आदत है इसलिए बोल रहे हैं।
कबीर दास जी ने भी कहा है ब्राता जी, निंदक नेरे राखे।
और अगर मान लो वो देखता है कि नहीं उसका चित्र तो जैसा उसने चाहा था वैसा ही बना है और जिनके लिए बनाया वो बहुत लाइक करेंगे इसे, तो उनको इनकी बातों को अवॉइड कर देना चाहिए, रिजेक्ट कर देना चाहिए जैसे, तो एक आदत डाल लेनी चाहिए कि दूसरे की हर बात पे रिएक्ट ना करना। ये अच्छी बात है कि हम सीख लें, करेक्शन की जरूरत हो तो कर लें, और कई बार हमें कुछ सीखने को मिल जाता है दूसरों से। कई बार कई लोग अच्छाई के लिए बोलते हैं, कभी कभी विपरीत भी चीज हो जाती है कि मनुष्य ने गलती की है, दूसरे बोल रहे हैं तो भी वो चिकना घड़ा बना रहता है, ये तो बोलते ही रहते हैं, वो अपने को करेक्ट नहीं करता, अपने में सुधार नहीं लाता। तो अपने में सुधार लाने का जो एक एटीट्यूड है, जो एक संकल्प है, वो मनुष्य के पास होना ही चाहिए कि अगर मार्जिन है तो वो उसको सुधारे।
एक बहुत सुंदर बात बता जी आपने कही कि मान लीजिए यदि गलती नहीं है तब तो हम उस पर कोई रिएक्शन दें ही ना, उसका प्रभाव हम पे ना पड़े, लेकिन यदि लगता है एक बार हम देख जरूर लें कि क्या सचमुच ऐसी कोई गलती है, और यदि है तो इसे बहुत ही खुले मन से स्वीकार करते हुए यदि हम दूर कर ले तो हमारा ही विकास होगा।
बिल्कुल, और उन्हें हम थैंक्स दें, बल्कि कहें कि और भी कोई करेक्शन हुआ करे तो हमें अवश्य दिया करो, क्योंकि जिस व्यक्ति को परफेक्ट बनना है, अपने कार्य को बिल्कुल संपूर्ण बनाना है, कोई कमी न रहे, तो वो एक्चुअली दूसरों के सजेशंस को वेलकम करता ही है। अब ये अलग बात है कि सजेशन देने वाला कैसे देता है, वो क्रोध से देता है या दो चार उल्टे सुलटे शब्द बोल के दे, तुम हो ही ऐसे, सुधरोगे ही नहीं, बार बार गलती कर देते हो, ऐसे भी दे सकते हैं लोग। तो करेक्शन करने वालों की लैंग्वेज भी बहुत सुंदर होनी चाहिए, ये उन्हें भी सीखना है। लेकिन हमें जहां तक सीखना है वो ये कि दूसरों के ऐसे शब्दों से हम अपने उमंग उत्साह और खुशी को नष्ट न करें। हमारे मार्ग में भी बहुत चीजें आई है, हमने शुरू में योग का बहुत अच्छा अभ्यास करना शुरू किया तो लोग कुछ भी गलती हो जाए तो पहला शब्द यही बोलते थे, हैं बन तो गए योगी लेकिन ये तो सीखा नहीं। तो मैं सोचता था मुझे खुशी होती थी,
आपको याद दिलाते थे,
मुझे खुशी होती थी कम से कम ये मेरे योग को तो मान्यता दे रहे हैं, बाकी गलती तो मेरे से हुई है उसको ठीक कर लेते हैं। तो मैं बिल्कुल उस पे निगेटिवली रिएक्ट नहीं करता था कि भाई गलती तो हो गई है, कई बार सचमुच पता चलता था गलती तो हो गई, तो बोलने वाले तो ठीक हैं, वो बोलेंगे ही, हम भी उनकी जगह होते तो वो हम भी बोलते ऐसा ही। लेकिन उन्होंने हमें एक अच्छी बात भी तो कह दी गुस्से में, तो दूसरों की भावनाओं को समझना, उनके क्रोध में भी प्यार को देखना, ये एक ऐसा एटीट्यूड है। क्रोध भी मनुष्य अपनों पे तभी करता है ना, वो उन्हें ठीक करना चाहता है, तो उसमें एक क्रोध के पीछे एक सूक्ष्म प्रेम भी तो समाया होता है ना। बाप अपने बच्चे को डांटता है, बुरा बोलता है, इसलिए कि वो अच्छे से अच्छा रहे, तो वास्तव में इसके पीछे उसका प्यार भी बहुत होता है। इन चीजों को हम ध्यान में रखते हुए कुछ चीजों को लाइट ले लें, कुछ चीजों को अवॉइड करें, कुछ चीजों को एक्सेप्ट करें,
बिल्कुल इससे हमारा जीवन बहुत ही बेहतर होता चला जाएगा। प्रथा जी, ये हमारे पास जो आज पहला SMS आया है, ये कहते हैं कि मेरा नाम देवेंद्र दुर्गे है, आप समाधान के सारे एपिसोड YouTube पर अपलोड कर दीजिए जनहित में। तो ये जनहित में ये चाहते हैं कि
जनहित याचिका इन्होंने दायर कर दी है, तो बड़ी अच्छी बात है और बिल्कुल ये काम हो ही जाएगा, और हम कहेंगे अपने जो ऑर्गेनाइजर्स हैं कि वो ऐसा काम जरूर करें, क्योंकि कभी कोई देखता है कभी नहीं देखता है, या जो आज वो देख रहा है हो सकता है उसमें उसकी समस्या का समाधान ना आए।
कई लोग ऐसा कहते हैं प्रताप जी, प्रश्न तो हमारे दिए गए हैं और हम कहते भी हैं कि आपके प्रश्नों को हमने लिया है, लेकिन शायद वो कभी कार्यों के वश नहीं देख पाते हैं, तो अपनी सुविधा के अनुसार संभव
देख पाए और ये काम हो जाएगा।
बिल्कुल, तो जनहित के लिए ही हम कार्य कर रहे हैं। लक्ष्य ही समाधान का ये है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। तो ये जनहित के लिए ही है, तो निश्चित रूप से आपके इस विचार पर विचार किया जाएगा और जल्दी से आपको ये समाधान प्राप्त हो जाएगा। दाता जी, मैं आपको मेल्स की ओर लिए चलता हूँ। ये हमारे पास पहला मेल आया है प्रिया जी का। ये कहती हैं, ओम शांति भाई जी, आई एम बी के प्रिया और मैं मैनेजमेंट कोर्स कर रही हूँ। मैंने आपके बताए हुए कई सारे संकल्प शक्ति के प्रयोग किए हैं, बहुत अच्छे अनुभव भी हुए हैं और संपूर्ण सफलता भी मुझे प्राप्त हुई है। मेरी दोनों जो आंखें हैं उनमें 1.5 का नंबर है, चश्मा इनको है, और ये चाहती हैं कि जब मैं छोटी थी तो मुझे गॉगल्स का बहुत ज्यादा शौक था, पर अब मैं ये नंबर्स रिमूव करना चाहती हूँ। क्या ये जो नंबर हैं वो दूर हो सकते हैं? और दूसरा ये कहती हैं, एंड आई वॉन्ट टू क्लियर जीपीएससी एग्जाम। सभी कहते हैं कि ये बहुत हार्ड होता है, पर मैं ये पास करके अपने लौकिक और अलौकिक माता पिता की सेवा करना चाहती हूँ, इसमें सफलता पाना चाहती हूँ, इसके लिए मुझे क्या करना होगा?
इनको जो संकल्प शक्ति के और योग के प्रयोगों में सफलता मिली
जी जी,
उसके लिए बहुत अच्छा, हम भी खुश हुए और हम इनको बधाई देते हैं, ये बधाई की पात्र हैं
जी।
और इनमें बहुत अच्छा उमंग है, देखिए चश्मे की जो बात है, क्योंकि इन्होंने सब कॉन्शियस माइंड में भर लिया था बचपन से, चश्मा बड़ा अच्छा मैं भी पहनूं।
अच्छा, बच्चों को बड़ा शौक रहता है ये सारी चीजें, दादा दादी ने पहना था
हम भी पहने, बिना नंबर का लगाए रखते हैं, थोड़े सोचते हैं इससे पर्सनैलिटी बहुत अच्छी दिखाई देती है, तो वो सब कॉन्शियस माइंड ने काम किया अंदर ही अंदर। और उससे ठीक है, और भी कुछ कारण रहे होंगे, क्योंकि आजकल पॉल्यूशन बहुत है और नर्व्स भी वीक हो जाती हैं, जो आंखों को जाती है ना ब्रेन से, किसी की रेटिना में कुछ गड़बड़ है, किसी का और कुछ, किसी का पर्दा, किसी की, तो तकलीफ होती रहती है। हम देखते हैं हमारे आई हॉस्पिटल हैं, भरपूर रहते हैं, ऑपरेशन होते ही रहते हैं वहां, तो धूल भी बहुत उड़ती है, डस्ट एलर्जी किसी को होती है, और आंखों में ये पॉल्यूशन के कारण भी न जाने क्या क्या जाता रहता है, और अंदर से भी न जाने क्या क्या आता रहता है बॉडी के, इसलिए ये सब हो जाता है। लेकिन अब ये अपने आंखों को एनर्जी देंगी, एक काम ये करेंगी, वही विधि, हाथ दोनों मलते हुए तीन बार याद करेंगी, मैं परम पवित्र आत्मा हूं, और अपने दोनों हाथ आंखों पे रख देंगी एक मिनट, और ऐसा पांच बार सवेरे पांच बार शाम को करेंगी, तो प्योर एनर्जी आंखों को जाएगी, वो जो नर्व्स हैं उनको भी स्ट्रेंथन करेगी, शक्तिशाली बनाएगी, और बाकी आंखों के नंबर को भी ठीक करेगी। लेकिन इनको एक अच्छा सा सबकॉन्शियस माइंड का प्रयोग रात को सोने से पहले करना है, और वो ये कि मेरी आंखें बिल्कुल ठीक हो गई हैं, मेरा चश्मा उतर गया है, ये संकल्प रात को पांच बार बिल्कुल नींद के पहले, एकदम इनको नींद आ रही है, समझो एक मिनट में दो मिनट में आने वाली है, तब ये संकल्प पांच बार कर दें, तो सबकॉन्शियस माइंड में जो इन्होंने भर लिया था ना वो रिमूव हो जाएगा और इनकी आंखें बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। दूसरी जो इनकी बात है, एक टफ एग्जाम इनको क्लियर करना है, और बड़ी अच्छी बात है कि चैलेंज अगर पावरफुल हो तो मनुष्य को अपनी शक्तियां बढ़ा देनी चाहिए, और जो एक पावरफुल चैलेंज को प्राप्त करना चाहता है, फेस करना चाहता है, तो वो निश्चित रूप से पावरफुल है। जिस व्यक्ति ने कभी एवरेस्ट पे चढ़ने का संकल्प किया था वो पावरफुल ही थे ना, जो पहले पहले चढ़े थे, हिलेरी और डेंजिंग, तो बहुत अच्छा चैलेंज, बहुत अच्छा लक्ष्य कि ऐसे हार्ड एग्जाम को भी मैं पार करके दिखाऊंगी, पास करके दिखाऊंगी, माँ बाप की सेवा करूंगी, बहुत अच्छी फीलिंग्स इनकी हैं, और डेफिनेटली इनके माँ बाप की दुआएं भी इनके साथ हैं। मैं अपने दर्शकों को, अपने विद्यार्थियों को ये फिर से कहना चाहता हूं कि माँ बाप की ब्लेसिंग्स बच्चों के लिए, उनकी सफलता के लिए, उनको अच्छी नौकरी मिले इसके लिए बहुत ही आवश्यक है, इसलिए कभी भी अपने जीवन में माँ बाप से बिगाड़नी नहीं चाहिए। कई बच्चे नफरत करने लगते हैं, बाप डांट रहा था तो एक निगेटिव फीलिंग बच्चों के मन में हो जाती है, लेकिन जैसे मैंने कहा उनके डांट में भी प्यार समाया हुआ होता है, इसलिए माँ बाप को सच्चे मन से सम्मान देंगे तो माँ बाप की ब्लेसिंग्स बच्चों को मिलेगी, और ये इनकी सफलता में बहुत एक अहम भूमिका निभाएगी। अब इनको अच्छी मेहनत तो करनी है, और दो तीन प्रयोग जो हम सब विद्यार्थियों को सिखा रहे हैं, हम बार बार सिखाएंगे ताकि कोई भी नया विद्यार्थी भी हमारी बात सुने तो इसको फॉलो करें। एक चीज तो ये कि सवेरे आंख खुलते ही सात बार याद करेंगी, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। क्योंकि हमारा परम पिता सर्वशक्तिवान है तो उसकी संतान होने के नाते हम भी बहुत शक्तिशाली हैं। इसके लिए हम शब्द यूज करते हैं मास्टर सर्वशक्तिवान
जी।
तो इससे सवेरे उठते ही शक्तियां एक्टिवेट हो जाएंगी और वो शक्तियां काम करेंगी सफलता दिलाने में। ये इसके पीछे फिलोसफी है। तो सवेरे उठते ही 7 बार ये दोनों संकल्प करेंगे, फिर रिपीट कर देता हूं, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, सफलता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। मेहनत तो इनको करनी है कॉन्फिडेंटली, बिल्कुल ये एक विजन बना लें कि मेरा ये एग्जाम क्लियर हो गया है।
ये संकल्प करने के बाद ये विजन देखें,
विजन देखें सवेरे ही, और नेट जैसे वो देख रही है
जी,
और उनका नाम है जैसे वो देख रही है, नाम है और एंजॉय कर रही है, वाह हो गया। तो उस एंजॉयमेंट को अभी फील करें वो कि हो गया, ये होना ही है। ये विजन सबकॉन्शियस माइंड में चला जाएगा और सबकॉन्शियस माइंड जिस विजन को स्वीकार कर लेता है उसमें क्षमता है उसको पूर्ण करने की। तो सबकॉन्शियस माइंड को फुल्ली कोऑपरेट करेगा सफलता दिलाने में। तीसरी चीज है, जब ये अभ्यास करें, मैं एक बहुत सुंदर अभ्यास इन्हें सिखाना चाहता हूं क्योंकि ये राजयोग करती हैं, पहले से इसने एक्सपेरिमेंट किए हैं। दो बातें बहुत सुंदर हैं, ये ऐसे ही सवेरे उसी टाइम पहले ये कर ले, उसके बाद मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, जैसे इसने 7 बार संकल्प किया और सफलता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है ये सोचा, उसी के साथ ये संकल्प करे, जो क्वेश्चंस मैं प्रिपेयर करूंगी वही आएंगे एग्जाम में। ये बहुत ही पावरफुल प्रैक्टिस है और सबकॉन्शियस माइंड का ये एक प्रयोग है। तो इनके सबकॉन्शियस माइंड ने इसे स्वीकार कर लिया, अब इनका सबकॉन्शियस माइंड यूनिवर्सली काम करने लगा। तो जिस प्रोफेसर ने पेपर बनाए हैं इनका सबकॉन्शियस माइंड उनसे लिंक्ड अप हो गया और जो क्वेश्चंस उसने लिखे हैं उन पर इनका ध्यान जाएगा। ये करूं वो जैसे अट्रैक्ट करेगा, ये क्वेश्चन मैं तैयार करूं, एक ये बात इनको करनी है। ये बहुत बड़ा प्रयोग है और मैंने थोड़े ही लोगों को कराया है, लेकिन सब लोग कॉन्फिडेंटली नहीं करते। अगर कॉन्फिडेंटली करेंगे तो ये बहुत सुंदर एक्सपीरियंस देगा। एक स्वराज अधिकारी की स्थिति का प्रयोग हम कराते हैं, क्योंकि जो ये स्टडी करेंगी प्रिया वो इनकी बुद्धि में जाएगा और बुद्धि मुख्य चीज है, जिसकी मेमोरी पावर जितनी स्ट्रांग है, जो किसी बात को अपने अंदर ज्यादा रख सकती है बुद्धि, वो हर फील्ड में सफल होता है। बहुत लोगों का ये पढ़ रहे हैं बुद्धि में भर रहे हैं, ठूस रहे हैं जैसे, और निकलता जा रहा है। तो बुद्धि कैपेबल नहीं है उन चीजों को संभाले, तो इन्हें एक बहुत अच्छा प्रयोग करना है। सवेरे ही कर लें, वो भी स्टडी से पहले कर लें, जब होमवर्क घर में करें एक बार तब कर लें, 3 बार तो ये दिन में कर ही लें। जैसे सवेरे वो अभ्यास किया, उसके बाद ये अभ्यास, मैं आत्मा स्वराज्य अधिकारी हूं, यानी अपनी मालिक हूं, देह की मालिक हूं, मन बुद्धि की मालिक हूं। अब बुद्धि की ये मालिक हैं, इनको अधिकार है कि वो बुद्धि को कुछ आदेश दें। तो जैसे बुद्धि को सूक्ष्म रूप से आदेश दे, है मेरी बुद्धि जो मैं पढ़ूं तो सब को याद कर लेना और परीक्षा के समय इमर्ज कर देना, क्योंकि वो तो ऐसे हो गया ना जैसे सीडी में या टेप में वो रिकॉर्डेड हो गया। अब उसको प्ले भी तो करना है, रिकॉर्ड हो, बुद्धि में सारा ज्ञान तो भरा हो लेकिन समय पर वो प्ले ना हो। तो ये संकल्प पहले ही बुद्धि को दे देना कि एग्जाम के समय तो उसको इमर्ज कर देना। तो ये अभ्यास रोज 3 बार ये करें, सवेरे करें, फिर एक बार जब स्टडी शुरू कर रही तब करें, बीच में एक बार कर लें। तो इनको अनुभव होता रहेगा कि बुद्धि बहुत तेजी से सब कुछ पिकअप करती जा रही है और इनका कॉन्फिडेंस भी इससे बढ़ता जाएगा। और होपफुली हमारी भी शुभ भावनाएं हैं कि ये अपने इस एग्जाम को क्लियर अवश्य
करेंगे। अब तक के अपने सारे प्रयोगों में सफल रही हैं, तो निश्चित रूप से इन दोनों प्रयोगों में भी
सफल होंगी और इनको कॉन्फिडेंस तो बढ़ ही गया हो।
बिल्कुल बिल्कुल। और आपने इतने विस्तार से भ्राता जी कहा है, तो मुझे लगता है इन्होंने जो कहा था कि ये जीपीएससी यूपीएससी एग्जाम में अभी अपीयर होने वाली हैं, तो निश्चित रूप से इसे क्लियर कर लेंगे। प्रिया, हमारी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं।
बिल्कुल,
ये आप क्लियर करें तो जरूर अपनी अपना संदेश हम तक भी जरूर पहुंचाइएगा।
जी बेटा जी, मैं ये कह रहा था कि ये जो अभ्यास हमने बताए ये हर विद्यार्थी के लिए उपयोगी हैं।
जी,
इसलिए सभी विद्यार्थियों को जो हमारी बात सुन रहे हैं या माँ बाप सुन रहे हैं, वो अपने बच्चों को सिखाएं या उन्हें हमारे केंद्र पर ले जाएं एक दो बार, वहां उन्हें ये विद्या सिखा दें, तो बच्चों की बुद्धि का विकास होगा, मेमोरी पावर बढ़ेगी, कंसंट्रेशन बढ़ेगी और बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे।
बिल्कुल प्रता जी, हमारे पास जो अगला मेल है ये इंदौर से आया है। मैं इनका नाम तो नहीं ले रहा हूं, लेकिन ये कहते हैं कि मेरी उम्र 22 वर्ष की है और मैं ये जो ब्रह्मा कुमारी इसके प्रोग्राम आते हैं टीवी पर, उन्हें पिछले 4 मास से देख रहा हूं। इसने मुझे बहुत मदद की है। मुझे एक समाधान चाहिए। मैं ये जो ब्रह्मचर्य अर्थात जो पवित्रता विषय है इसमें बहुत ज्यादा वीक हूं, इसके लिए मैं बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहा हूं। बहुत ज्यादा ये वासनात्मक विचार मेरे अंदर आते रहते हैं और मैं अपने आप को रोक नहीं पाता हूं। यद्यपि अब तक मैंने कुछ ऐसा बाह्य रूप से कुछ गलत नहीं किया है, लेकिन अंदर की ये जो चाहना है बहुत ही प्रबल हो जाती है और ऐसे में मुझे अपने आप को रोक पाना बहुत कठिन महसूस होता है। तो ये चीज मुझे बहुत ज्यादा परेशान कर रही है, कैसे मैं अपने आप को इससे मुक्त कर सकता हूं?
देखिए, पहले मैं इसका फाइनल उत्तर दे दूं, फिर इसके कारणों पे चलते हैं।
जी,
जितना मनुष्य योग अभ्यास करता है तो परमात्म शक्तियां हमारे अंदर आने लगती हैं और इन शक्तियों से हम इन वासनाओं को नियंत्रण में रखने में सफल होते हैं। यानी हमारी पावर ज्यादा हो जाती है, वासनाओं की पावर बहुत फीकी ढीली पड़ जाती है। तो इन्हें अपना योग अभ्यास बहुत बढ़ाना चाहिए। देखिए, ये समस्या उन मनुष्यों के साथ आती है या तो पूर्व जन्मों में वो बहुत विषयी रहे हों, या इस जन्म में बचपन से ही उन्होंने काफी ऐसी फिल्म देखी हो, चित्र देखे हो, ऐसी गंदी विचारधाराएं उनकी रही हो, जैसे कल्पनाएं की हो, बड़े होकर शादी करके हम ये करेंगे, ये करेंगे। उन व्यक्तियों की वासनाएं बहुत प्रबल हो जाती हैं, लेकिन अंततः मनुष्य को ये बड़ा कष्ट पहुंचाती हैं, क्योंकि क्या है कि इन वासनाओं के कारण मन और बुद्धि की बहुत सारी शक्ति इनमें लगी रहती है, तो कामकाज या स्टडी उससे वो कम हो जाती है ना, नेचुरल है,
एकाग्रता पूरी तरह,
बिल्कुल आधी शक्ति इनमें जा रही है, आधी बची वो और सारे बहुत सारे व्यर्थ विचार मनुष्य के मन में रहते हैं, तो कामकाज में मनुष्य को सफलता नहीं मिलती। इसलिए गीता में भी कहा, काम महाशत्रु है, और जिसके पास काम का ऐसा प्रबल वेग होता हो उसके लिए तो अति महान शत्रु है जो उसे नष्ट कर देता है। हमारे पास ऐसे बहुत सारे लोग मिलते हैं जो अपनी वासनात्मक वृत्ति और संकल्पों के कारण बहुत बेचैन हैं, अशांत हैं, टेंशन में रहते हैं, क्या करें, समाज का भी डर, पाप भी समझते हैं उसको करना, और उसको कंट्रोल भी नहीं कर पा रहे। ये भगवान ने राजयोग इसीलिए सिखाया है, उसको हम पतित पावन कहते हैं, तो उसने हमें राजयोग सिखाया कि राजयोग के बल से हम पावन बनेंगे। नहीं तो बहुत सारे सन्यासियों को भी यही फीलिंग होती है, जो इनकी फीलिंग है वही अनेक सन्यासियों को है, क्योंकि व्रत तो ले लिया पर उस व्रत को निभाने की विधि का पता नहीं है। तो विधि है उसकी प्रॉपर, एक तो राजयोग, दूसरा इन्हें सवेरे उठकर, अगर ये 4 बजे उठ जाएं तो 4 से 8 बजे तक का टाइम 6 मास तक अपने को स्पिरिचुअली चार्ज करने में व्यतीत करना चाहिए। 4 से 6 बहुत अच्छा योग करें, स्नान आदि भी बीच में कर लें, बहुत अच्छा योग करें।
जी, अभी अभी ये जुड़े हैं, केवल हमारा प्रोग्राम ही देखते हैं, तो संभवतः शायद विद्यालय से न जुड़े हों, तो
तो ये थोड़ा विद्यालय से जुड़े और वहां जाकर ये राजयोग सीखें। सवेरे उठें, ये थोड़ा ठंडे नॉर्मल पानी से नहाएं, थोड़ा प्रकृति में घूमें, थोड़ा अच्छा जो सवेरे माहौल होता है सुंदर, उसका आनंद लें, उससे कर्मेंद्रियां शीतल होती हैं, मन के विचार भी शुद्ध होते हैं, क्योंकि सारी यहां जो समस्या इसमें है वो मन के विचारों की होती है। लेकिन ये राजयोग सीखकर उसका बहुत अच्छा अभ्यास करें। जो भी लोग इस संसार में काम से बहुत पीड़ित हैं उन्हें राजयोग अवश्य सीखना चाहिए, राजयोग के बल से ही वो पवित्र जीवन का निर्वाह कर सकते हैं। इसके अलावा इन्हें अभी से पानी चार्ज करके पीना, पवित्र भोजन खाना, इसका बहुत अच्छा प्रयोग करना चाहिए। तो मैं परम पवित्र आत्मा हूं, इस संकल्प को करते करते भोजन बनाएं, पानी को चार्ज भी इसी तरह करें, दृष्टि देके सात बार संकल्प करें मैं परम पवित्र आत्मा, फिर पिए। इन सब साधनों को करने से इनकी जो ये वासनात्मक एक एग्रेसिवनेस है, जो बहुत फोर्स है, वो समाप्त हो जाएगा। थोड़ा ज्ञान लेंगे तो ज्ञान की स्टडी करने से जो ये शक्तियां हैं उधर डाइवर्ट होने लगेंगी और इनकी ये मनोस्थिति सुधर जाएगी।
कई बार व्रता जी ऐसा होता है, विषय तो खैर बहुत विस्तृत है, हमने पहले भी चर्चा की है, कि जब व्यक्ति के अंदर ये उफान आता है तो अपने आप को जैसे वो कंट्रोल नहीं कर पाता है, चाहता तो बहुत है कि कर ले, आपने राजयोग का एक सुंदर अभ्यास बताया, लेकिन जैसे ये उठे तब इंस्टेंट उस समय क्या कर लेना चाहिए कि इस बुरी चीज से उस समय के लिए तो कम से कम बचे।
देखिए, पहले तो मनुष्य को एक स्थूल काम करना चाहिए, उस स्थान से हटे, वो अपने कमरे में है, अपनी बेड पर है, थोड़ा वहां से बाहर आए। स्थान का भी बहुत बड़ा प्रभाव मनुष्य के ऊपर होता है, और अगर राजयोग थोड़ा भी सीख लिया है तो फील करे कि सामने शिव बाबा खड़े हैं ब्रह्मातन में, और जस्ट उन्होंने अपना वरदान ही हाथ मेरे सिर पर रख दिया है। बस इतना सा प्रैक्टिस करेंगे तो बाबा के जो सुंदर वाइब्रेशंस हैं वो तन मन में प्रवेश करेंगे और ये समस्या समाप्त हो जाएगी।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया व्रता जी, आपने जो अंतिम विजन दिया वो तो सचमुच बहुत प्रभावी लग रहा है कि तुरंत ही इससे मुक्ति हो सकती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, यदि समस्या है तो उसका समाधान भी है। हम बार बार चर्चा करते आ रहे हैं कि कोई भी संसार में ऐसा ताला नहीं है जो बिना चाबी के हो। कई बार हम ताला लगा हुआ देख करके चाबी ढूंढने में तो लग जाते हैं, चाबी मिलती नहीं है, आसपास ही होती है। थोड़ा सा यदि शांति और धैर्यता हम बनाए रखें और साथ ही समाधान में भ्राता जी जो हमें सुंदर सुंदर चाबियां प्रदान कर रहे हैं, इनका इस्तेमाल अवश्य करें तो जीवन में जो भी समस्या है, चाहे वो ब्रह्मचर्य से जुड़ी हुई है, चाहे अन्य पारिवारिक, सामाजिक या मानसिक समस्या है, उन सबसे आप अवश्य मुक्त होंगे। समाधान का लक्ष्य ये है कि आपको सुंदर समाधान प्रदान किया जाए ताकि आप जीवन का संपूर्ण आनंद प्राप्त कर सकें। आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।